या बुनैया इन्ना हिंदकु मिसकाल हब्बत मिन खरदल। और लुकमान ने कहा बेटा कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान और जमीन में कहीं भी छुपी हुई हो, अल्लाह इसको निकाल लाएगा। वो बारीक बीन और बाखबर है। ये है अपने बच्चों को सिखाने वाली बात, तकवा। अल्लाह देख रहा है बेटा, रात की तन्हाइयों में क्या देखते हो, माँ बाप के सामने क्या और उनके पीछे का, और किताब के बहाने अंदर क्या पढ़ रहे हो, और कंप्यूटर को स्कूल के काम के लिए लिया लेकिन उसे कर क्या रहे हो। अल्लाह की नजर तुम्हारी हर चीज पर, इसलिए तुम अल्लाह से डरो। अपना डर ना दे, अल्लाह का डर दे। वो आएंगे, ये होगा, अम्मी आ ले, ये कर लूंगा। बाप माँ से डराते रहते हैं, माए बाप से डराती रहती हैं, नतीजा क्या होता है, बच्चे किसी से भी नहीं डरते। अल्लाह का डर दे, अल्लाह का डर बंदे को सीधा कर देता है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सबर कर। अब बच्चों पे क्या मुसीबतें पड़ती हैं, छोटा भाई शॉपनर लेके भाग गया, ये भी बड़ी मुसीबत है, और वो बड़े छोटे भाई ने आपकी कॉपी पे लकीरें लगा दी। तो बेटों को, बच्चों को सबर सिखाए। अब उनको बड़ा बड़ा सबर तो अब नहीं सिखाएंगे, तो बच्चों को शुरू से टॉलरेंट बनाए कि कोई बात नहीं बेटा, टॉलरेंस पैदा करो, कोई बात नहीं, शुक्र करो भाई है तभी तो उसने तुम्हारी चीज ले ली। तो आप देखेंगे ये घरों में हर वक्त मुकदमे चलते रहते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर माँ लॉयर हो ना तो बहुत कामयाब लॉयर हो। एक दिन में 20-25 मुकदमे आते हैं माँ के पास। कई दफा ड्राइविंग में जब सिस्टर्स राइड देती हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, तो वो पीछे बच्चे बैठे होते हैं, बांधे ही होते हैं किस्म के, चार बच्चे हैं, तीन उनको रखा है, मैं उनके साथ आ गया। तो कई दफा माओ को ड्राइविंग करते हुए पीछे मुड़ मुड़ के उनको समझाना पड़ता है, सबर करो, खामोशी करो, लड़ाई 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 लड़ाई। वो उसको कह रहा है, उसने मेरी कर दी, मेरी जगह पे बैठ गया, उधर कर दिया। तो मैं कहती हूँ अल्लाह के बंदो, ये इतना क्यों लड़ते हैं? कहती घर में भी जाके इनका यही हाल है। तो लड़ते तो सारे ही हैं, लेकिन जब हर एक को अपना हक लेना है तो हर बच्चा वकील बन के अपना हक तो लेता है, तो ये मुकदमे भी जरा कम करवाने की जरूरत है। अपने बच्चों को टेम करें, उनके अंदर हम्बलनेस लाएं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मस्जिदों में, सड़कों पे, दरवाजों पे घूम रहे हैं, ये हाइपरिज्म है, ये आज का तोहफा है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कहते हैं बच्चे ऐसे बुद्धे होते थे, बैठ जिधर बिठाओ उधर ही बैठ जाते, और इधर बदाना उसकी साइड पलट दो। अब तो पैदा होता तो बच्चा आके पटक पटक करके आंखें खोल रहा होता है। तो ये वक्त के तकाजे हैं ना, वो कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं, टेक्निकल दौर में पैदा हुए हैं, तो अब वो कुछ तो करेंगे। तो बहरहाल ये कि बच्चों को जरा सा कंट्रोल में रखें। आप कहेंगे कि ये बच्चों पे बात बहुत करती हैं, ये मेरा फेवरेट इशू है, इस वजह से कि आज के स्कूल हों या आज के घर हों, जब तक आपको बच्चों को डील करना नहीं आता, आप कामयाब पेरेंट्स नहीं हो सकते, कामयाब टीचर नहीं हो सकते। आज हम अपने बच्चों को बचपन से वो सब सिखा सकते हैं जो जवान होने पर वो नहीं सीखते हमसे, लेकिन हमारा हाल है ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनको छोड़ दो। इंसान का बच्चा है, कोई और तो नहीं है कुछ, आप उसको क्यों इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं? इसी से फिर पर्सनैलिटी डेवलप होती है, फिर अपनी बात आती है। जैसे मैं देखती हूँ माएँ बच्चों की जरा सी कोई बात कहते हैं ना फौरन मान जाती हैं। मैंने कहा आपका ये बच्चा कभी नो नहीं सीखेगा, आप कल इसको कोई चीज़ नहीं दिलाएंगी ये रोएगा, वो लौटेगा, ज़मीन पर गिरेगा, घूमेगा। आज आप फ्रॉक पूछ रही हैं बेटा ये लोगी, तो कल वो आपकी पसंद के कपड़े पहनेंगी। आज आप छोटे बच्चे को दरवाजे पर खड़ा करके पूछे बेटा क्या खाओगे, तो कल वो आपकी मर्जी का नहीं खाएगा। आप एक बात याद रखें, बच्चों से मनवाएं उनकी मानने से ज्यादा। शुरू के 6-7 साल, बचपन से लेके 7 साल की उम्र तक अगर आप बच्चों को अपनी मनवा लें, यकीन कीजिए कि जवान होने तक वो बच्चे आपकी आंखों की ठंडक बन चुके होंगे, फिर आपकी वो मानेंगे। ऑपोजिट कहानी है, बचपन में हम लाड देखते रहते हैं, बड़े होकर उनको सलवातें सुनाते हैं। जिस उम्र में बच्चों से मोहब्बत करनी है ना, उस वक्त तक मोहब्बत की बजाय हम उनके लाड देख रहे होते हैं, और जिस उम्र में बच्चों से दोस्ती करनी है ना, 11, 12, 10, 12 साल, जो चेंजेस की उम्र है, लड़कियों में चेंजेस है, लड़कों में उस वक्त माँ को दोस्त बनना है, उस वक्त तक हमारा टेम्परामेंट लूज हो चुका होता है। जवान बेटी देख के तुम्हें वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है, तुम ना मुझे दिखा करो, क्यों? इसलिए कि लोगों को पता चल जाता है तुम मेरी बेटी हो, तो मैं इतनी उम्र है मेरी। ऐसी माएं मैंने देखी, सबसे बाइखलाक, इतनी स्वीट, सब कहते हैं फुलां सिस्टर बहुत नाइस, जो ही अपनी जवान बेटी सामने आई तो बस चिचड़ी किकड़ी पिकड़ी। क्या कहती है, जब ये मेरे साथ नहीं थी लोग मुझे कहते हैं आप कितनी जांग लगती हैं, तो जब ये आके मम्मी कहती है तो मेरा वो ग्राफ जो है वो डाउन हो जाता है। तो भी आपको क्या चाहिए, अब रिश्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको? आप बड़ी हैं तो बड़ी लगे, बेटों की माँ, बच्चों की माँ है तो बच्चों की माँ लगे, लेकिन ये शौक है हर चीज में ज्यादा दिखे, उम्र में कम दिखे। कितना खुशी होती है जब कोई आपसे कहते आप कितनी यंग लग रही है, कितनी छोटी लग रही है, और कोई आपको कह दे आपके हस्बैंड जो है तो आपके ससुर लग रहे थे, उस दिन तो दिल करता है उसको जाके खूब इफ्तारी का ट्रे देकर आए कि इतनी बड़ी खबर उसने, और मियां को फिर सुनाएंगी आपको, पता वो क्या कह रही थी, मेरे ससुर लग रहे हैं। छोड़े दाढ़ी, इसीलिए वो गरीब बेचारे क्लीन शेव करके बैठ जाते हैं। अब सफेद वालों को रंगू या दाढ़ी रखू या सुसर लगू, मैं क्या लगू, अल्लाह के बंदों में कहाँ जाऊं। तो वो बेचारे फिर परेशान, फिर कहते मियाँ दाढ़ी नहीं रखते। तो आप उनको हैंडसम कहें, उनको अच्छा कहें, उन्हें क्या आप बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। तो इंसान अपनी उम्र के साथ चले तो अच्छा लगता है। अब आप पढ़ी और दो चुटिया करके पोलका डॉट के कपड़े पहन के आप अपनी बहू के साथ फिरेंगी तो लोग फिर आपको तो यही कहेंगे ना कि आप बड़ी फनी लग रही हैं। तो इज्जत करवानी सीखनी चाहिए, बड़ों को बुजुर्ग भी बनना चाहिए। कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग नहीं होते। ये आप सारे इतना हंसे क्यों बाय द वे? इतनी खुशी तो आपको जन्नत के ऐसे सुन के नहीं हुई जितनी आपको यहां हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हंसा रही हूं आपको? अल्लाह अकबर। चलिए फिर अब सीरियस होके पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जिंदगी की मिसालें हैं। ये नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे ना, तो हम इस कुरान से बस पारा ही पूरा करके जाया करेंगे। इसलिए अब एक और बहुत खूबसूरत अदब बच्चों को सिखाने का, वो क्या है? फरमाइए, वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, और लोगों से मुंह फेर कर बात ना करो। ये है आज सीखने की बात। बच्चों से कहें कि अपने आप को जरा नीचा रखें। ये जो है ना, तो सायर खद कलिन्नास, सार बीमारी को कहते हैं। जो ऊंट को जब होती है ना, तो उसकी गर्दन टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। अल्लाह माफ करे, जब बचपन से बच्चों को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं और उनकी इतनी मानते हैं, बड़े होके वो अपने माँ बाप के दोस्तों और उनके एज के लोगों से बात ही नहीं करते। अकड़े हुए, एक तने हुए और गर्दने अकड़ी हुई, उसे रौनत कह लीजिए। सब में नहीं भी होगी ना, लेकिन अक्सर आज मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन नहीं करते, उनके बच्चे रूड होते हैं, बात ही नहीं करते। उर्दू बोलने वालों को तो वो बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं। कहते हैं ये कौन है थर्ड क्लास आंटी, ये आ गई है पाकिस्तान से, हम इनसे नहीं कुछ सीख सकते। क्यों? इनको इंग्लिश नहीं आती। तो आप उर्दू बोल के दिखाएं, आपको आती है अच्छी उर्दू? जैसी अच्छी उर्दू आप बोलते हैं, उतनी अच्छी इंग्लिश हमें भी आती है। तो याद रखिए, कभी बच्चों में एक्सपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना डालें, ना इंफीरियरिटी ना एक्सपीरियरिटी, क्योंकि ये दोनों चीजें फिर उनको खुद पसंद बनाती हैं। और इस वजह से भी कई बच्चियां शादी के बाद घरों में बसती नहीं है, क्योंकि उनके मुंह तो फूले रहते हैं, स्माइल तो बहुत कम आता है उनके मुंह पर। फिर कहा ना जमीन में अकड़ कर चलो, अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जतलाने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इतदाल इख्तियार करो। अब ये क्या है, बच्चों को चाल का इतदाल नियम सिखाएंगे? जमीन पे चलो तो इतनी नरमी से, हम छोटे थे तो हमें याद है काद कहते थे जमीन पे जोर से कदम मारे ना तो जमीन बद्दुआ देती है, नमक गिर गया तो पलकों के साथ नमक उठाना पड़ेगा। ये मुझे खुद अच्छी तरह याद है। कभी चम्मच से गिरे तो परेशान हो जाते थे, इतने दाने मरी पलकें कैसे उठाएंगी। आज बच्चे आधा खाएं आधा फेंक के माँ को परवाही नहीं होती, चलो फेंक दो किनारे हैं फेंक दो, चलो मैं भी नहीं खाती फेंक दो। ये आदत है, इसमें सिखाएगी कि रिसोर्सेज को यूज करना सिखाओ। आधी पानी की बोतल पी आधा फेंक दिया, कोई बात नहीं, और है ना इतनी पड़ी हुई, और लोग डोनेट भी तो इतना करते हैं, चलो पड़ी है पिला दो। आज जिस मुसलमान उम्मत में मस्जिदों में जाकर वहां के रिसोर्सेज को यूज करने का शऊर नहीं है, मुझे सच बताएं, चाहे वो खाना है पीना है टिश्यू पेपर है या डिस्पोजेबल ग्लास या प्लेटें, क्या वो कल बीइंग अ नेशन कोई एक अच्छी उम्मत बन सकती है? अपने घरों में न जाने कैसे रहते हैं लोग। इस तरह से एक पानी पिया कटक से फेंक दिया, दूसरा पिया फिर फेंक दिया। एक बंदा जो एक इफ्तारी करके जाता है, कमो बेश वो 8-10 प्लेटें ग्लास चम्मच डोंगे यूज करके गया होता है, और बाद में इतने बड़े बड़े ट्रैश के डब्बे। मेरा ख्याल है कि अगर एक सजेशन किसी को अच्छी लगे तो लगे, अगले साल जहां भी जिस मस्जिद या जो भी दीन के नाम पे इफ्तारी कराता है, शुरू में लोगों को एक बेहतरीन प्लेट ग्लास और चम्मच तोहफे में दे इफ्तारियों के शुरू में, और उन्हें कि एवरीडे ब्रिंग योर ओन प्लेट और अपना ग्लास खाओ पी के उसके बाद साथ छोटे डिस्पोजेबल लिफाफे दे दे, कहना टेक विद यू एंड वॉश एंड कल ले आओ। इज्जत से कहिए, जो कागजों की प्लेटें ये तो शर्मिंदा कर देती हैं बंदे को। अब देखिए, प्लास्टिक की चम्मच से खाना कोई आसान है? वल्ला ये बिल्कुल बेइज्जती की बात है कि आप अपने मेहमानों को कागजों में खिलाएं। आप अपनी प्लेट घर से लें। चलें ये भी कर सकते हैं हम लोग कि अगले साल अगर हमें मौका मिला तो यही करेंगे, हर एक अपनी प्लेट ग्लास ले आए। चले मैं अपनी 4 लोगों की लेंगी और ये 6 प्लेटें मैं घर ले जाऊंगी। क्यों नहीं हम ये आइडियाज देते दीन वालों को? और मैं जो सच्ची बात है, उस वक्त वो सिस्टर जो वॉलंटियर करती हैं और खाने खिलाती हैं और बाद में स्मरती हैं, मैं कहती हूँ इनका क्या अजर होगा, कितना सबर कितना शुक्र। एक दिन आपके घर में 10-15 लोग आ जाएं, 4 दिन तक आपका घर सीधा नहीं होता। आप फ्री ना उन सिस्टर्स को कि जो मस्जिदों में इफ्तारियों में खिलाती पिलाती और बाद में स्मेटती और जो बचा हुआ फिर उसको हैंडल करती हैं। ये जहालत की अलामत है, हमें खुद नहीं वहां। और जिसने मस्जिद में खाना खाने आना है वो पहले अपॉइंटमेंट दे के मैं आऊंगा, खाना ऑर्डर करें एक दिन कम अज कम 24 आवर्स या आई थिंक सो इससे भी चले पहले, और जो कैटरर्स हैं उनको आप पहले से होल्ड पे रखें कि हम ऑर्डर तो आपको 100 का करें लेकिन हम कल रात को कंफर्म करेंगे। मस्जिदों क्यों हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते, एक बना दें पेपर सब्सक्रिप्शन के आज हम आ रहे हैं, हमारे साथ 5 लोग आ रहे हैं, इतने लोग हैं उनको लाएं, 24 घंटे से पहले बता दिए इट्स फाइन, नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकते, खाना ना बचे ना कम हो, फिर बातें करते हैं आज खाना कम हो गया और आज बहुत बच गया, नहीं हमारे घर तो कोई नहीं खाता, वो क्या करें इन प्लेटों को जो 50 प्लेटें बच गई, ये आप देखेंगे कमोबेश कई जगहों पे ये मसला है, और फिर कहते फेंक दो खाना किसी ने, जितना खाना हम मुसलमानों का रमजान में इफ्तारियों में जाया होता है, मैं कहती हूँ अल्लाह उस पर पूछ लेना तुम्हारी सारी इफ्तारियों का अदर जाया कर दे, इसलिए हमने कभी इफ्तारियां ऐसे नहीं कराई, दिल बहुत चाहता है। एक दफा हमने कराई थी अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म से एक जगह इफ्तारी, आज से कई साल पहले गए, $1,000 का बिल आया था, उस दिन मैं परेशान हुई थी, $1,000 हमने उनको खाना खिला दिया जो पहले ही घरों में खाते पीते और पता नहीं आधे रोजेदार थे आधे नहीं, और उस दौर में शायद डॉलर मुझे लगता है कि कोई 60-70 रुपीज का था पाकिस्तानी, कुछ इस तरह से था, तो मैंने हिसाब लगाया कि 60-70,000 रुपीज लग गए आज की इफ्तारी में, आज के बाद नहीं होगा, आप सबने डोनेट करना कीजिए, इसको किसी गरीब मुल्क में भेजें, किसी काम में लगाएं, 60,000 की किताबें मंगाई हो तो हो सकता है वो 60 स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, तो आपका सदका जारिया चलता ही जाएगा कि कहां तक वो किताब आपने पढ़ाई, हम दिल खोल के खानों में पैसा देते हैं, और रहम आता है मुझे उन लोगों पर जो इफ्तारियों में खाने के पैसे देते हैं, हर मस्जिदों में मैं ज्यादा नहीं जानती लेकिन मेरा गुमान है कि आज भी 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 तक का खाना एक एक दिन में एक मस्जिद में आ रहा है, और किसी ऐसी मस्जिद में जाने का इत्तफाक हुआ जहां इफ्तारी नहीं है तो सिर्फ 2 लोग थे और वो भी भूखे बैठे होंगे कि वहां मस्जिदें खाली हैं, और जिन मस्जिदों में खाने ऑफर होते हैं लोग भागते हैं और खाने के बाद मस्जिद खाली, क्योंकि खाना खाने आए थे होटल समझ के चले गए, फोन करके लोग पूछते हैं आज अरबी का आ रहा है, पंजाबी आ रहा है, पाकिस्तानी आ रहा है, तो वो होटल के आप डिसाइड कीजिए, इज इट योर मस्जिद और इस होटल, जिस उम्मत को अपनी मस्जिदों में खाने के लालच में बुलाया क्या वो मस्जिद मस्जिद रही, रूहानियत है नहीं रहेगी। तो बहरहाल मैं इस पे कोई अपना रिव्यू नहीं दे रही ना क्रिटिसिज्म है, जो दे रहे हैं अल्लाह उनका कबूल करे, जो खिला रहे हैं उनको अजर मिल रहा है, बहुत सारों का भला हो रहा है, लेकिन हमें अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है कि खाना जाया ना हो। तो यही बात जहां कह दी कि इत्तेदाल बैलेंस्ड हो, अपने आप को दरमियानी रखो, आवाजें भी दबाओ, और सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है, आप अपने लिए इसमें नियत करें कि अपने बच्चे की उस बात का जवाब नहीं दूंगी जो मुझे दूर खड़ा होके पुकारेगा अम्मी, इतनी ऊंची आवाज है और माँ भी वहीं से चीख के बोलती है, कभी जवाब ना दे, बच्चे को एक अदब सिखाए, उसमें हमने इस पे बात की थी, 10 फुट एक लिमिट है अपनी मम्मी को कॉल करने, मम्मी प्लीज कैन आई कम, मम्मी प्लीज लिसन टू मी, वहां खड़ा बच्चा अगर आपको यहां बैठे मैं माँ हूं मैं तो कभी ना बोलू, बोलते रहो चीखते रहो मेरे कानों में तेरी आवाज ही नहीं जा रही, तरीके से और सलीके से और मेरे करीब और मेरे से बात करो, फिर मैं भी उसकी बात पूरी सुनूंगी, होता क्या बच्चे उधर चीख रहे हैं, माएं वॉकमैन लगा के बातें भी हाँ हूं करती, ना वो उसकी सुनती है ना वो उसकी सुनते, उनको चीखने की आदत पड़ गई, इनको सब्र करने की आदत पड़ गई, घरों में इतनी बेसकुनी होगी तो आप बताइए घरों के बुजुर्गों का क्या हाल होगा, और घर में कोई दीन का काम कैसे लेगा देगा, तो घरों को मुहज्जब बनाएंगे ना इंशाल्लाह बाहर भी तहजीब आएगी।